शिवी आर्या की केबिन में आई हुई थी। वो अपने बनाए ड्राफ्ट को पढ़ रही थी तो वहीं आर्या उसकी मेडिकल कंडीशन को जानने के बाद उसकी हेल्प करने के बारे में सोच रहा था। मुझे अपने प्राइवेट नंबर दो, अचानक आर्या ने कहा तो शिवी की आंखें बड़ी हो गईं। आपको मेरे प्राइवेट नंबर क्यों चाहिए, उसने पूछा। तुम्हारी मेडिकल कंडीशन काफ़ी सिवियर है। उस दिन मीटिंग रूम में तुम्हारी टीम तुमसे दूर बैठी थी। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा बनाया ड्राफ्ट इतना अच्छा है, फिर भी डिपार्टमेंट के एक कोने में बैठकर काम करना, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। इस संडे फ्री रहना, मैंने यहाँ के बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली है। शिवी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, काश मैं इस इंसान से मिली ही ना होती। हर रोज एक झटके देते रहता है और जब देखो मोबाइल नंबर मांगता रहता है। उसे चुप देख आर्या ने फिर कहा, वहाँ आओ तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री लेकर आना। तुमने अब तक जिन भी डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करवाया है उन सबके बारे में पता होना चाहिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट कर चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सावधानी बरतनी होगी, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेरी तसल्ली के लिए तुम एक बार मेरे रेकमेंड किए डॉक्टर से भी बात कर लो। अब अपने नंबर बताओ। आर्या ने शिवी का नंबर सेव करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। शिवी ने अपना मोबाइल नंबर उसे बता दिया। उसके बाद शिवी ने फाइल खोली और पॉइंट समझाने लगी। वो दोनों इवेंट के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी आर्या की केबिन का दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ खुला। ऑफिस में शौर्य और मायरा थे और उनके पीछे जेनी, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। उन्हें सामने देखकर आर्या का अच्छा खासा मूड खराब हो गया। जेनी, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ मिस अय्यर के साथ मीटिंग कर रहा हूँ और मैंने किसी को भी अंदर भेजने से मना किया था, फिर ये दोनों यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? आर्या ने अपने गुस्से को काबू करके बहुत शांति से कहा, सर मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, जेनी ने घबराकर जवाब दिया। हम बस आपसे बात करना चाहते थे बिग ब्रो, मायरा ने कंधे उचकाकर कहा। हमने इस बारे में दादू से भी बात की थी, ये हमारा फैमिली मैटर है तो बेहतर होगा कि हम लोग अकेले बैठकर बात करें, शौर्य बोला और आगे आने लगा। उसके साथ मायरा भी आई। मायरा ने शिवी के पास आकर कहा, हे तुम अपना काम बाद में कर लेना, हमें अपने बड़े भाई से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपना ये जो भी सामान है यहाँ से उठाओ और निकलो। कितनी अजीब है लड़की ये, खुद को पूरा कवर कर रखा है। आपने कैसे कैसे लोगों को काम पर रख रखा है ब्रो, शौर्य ने शिवी की तरफ देखकर मुंह बनाया। आर्या अपने गुस्से को काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहा था और उन दोनों की बात काफ़ी शांति से सुन रहा था, पर जब वो दोनों शिवी की इंसल्ट करने लगे तो आर्या का गुस्सा उसके बस के बाहर हो गया। उसने अपने टेबल पर जोरदार पंच किया। अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी से बात करने की? जेनी और मिस अय्या दोनों ही तुम दोनों से उम्र में बड़ी हैं, सबसे पहले तो तुम दोनों उनसे माफ़ी मांगोगे और फिर सीधा घर जाओगे, आर्या ने चिल्लाकर कहा। शौर्य और मायरा अपने काम से आए थे, इस वजह से उन्होंने आर्या से उलझना सही नहीं समझा। मायरा ने इशारे से शौर्य को माफ़ी मांगने के लिए कहा। वी आर सॉरी, शौर्य नजरें झुकाकर बोला। हम जानते हैं हमें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, हम यहाँ किसी काम से ही आए हैं। आप जानते हो ना हम बेवजह आपके ऑफिस नहीं आते बिग ब्रो, मायरा ने नरमी से कहा। आर्या के जवाब का इंतजार किए बिना ही मायरा शिवी के पास आई और कहा, अब मैं तुमसे बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ, यहाँ से उठो, हमें भाई से बात करनी है। मायरा ने शिवी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से उठाने लगी। तभी आर्या ने कहा, उसका हाथ छोड़ दो मायरा, उसे क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है, अगर तुमने उसे छुआ तो तुम्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है। आर्या की बात सुनकर मायरा ने उसका हाथ छोड़ दिया। आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी, शौर्य और मायरा उससे काफ़ी दूर जाकर खड़े हो गए। मैं चलती हूँ, शिवी को आर्या की बात अच्छी नहीं लगी, वो उठकर जाने को हुई। तभी आर्या ने कहा, मुझे अभी मीटिंग में टाइम लगेगा, हम शाम को बात करते हैं। ठीक है फिर, आपको घर आना होगा, मायरा ने कहा और शौर्य के साथ वहाँ से जाने लगी। उनके वहाँ से जाते ही आर्या ने राहत की सांस ली और शिवी से कहा, थैंक गॉड एंड यू टू, आज तुमने मुझे बचा लिया। आपको इस तरह उनके सामने मेरी मेडिकल कंडीशन का जिक्र नहीं करना चाहिए था, यही वजह है कि मैं खुद लोगों से दूर रहती हूँ। आगे से आपको मुझसे कोई काम हो तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर सकते हैं, वरना कहीं आपको भी इन्फेक्शन ना हो जाए। शिवी ने फाइल उठाई और वहाँ से बाहर जाने लगी। बाहर जाते हुए उसने शौर्य और मायरा को देखा। उनको देखकर उसने अपने मन में कहा, थैंक गॉड इन दोनों की वजह से बच गए, वरना वो इतने सवाल पूछ रहा था कि जवाब देना मुश्किल हो रहा था। ज्यादा देर तक आवाज़ बदल पाना भी पॉसिबल नहीं होता। अब आगे से जब भी वो मुझसे बात करेगा तो सामने नहीं आएगा। आर्या से जैसे तैसे पीछा छुड़ाकर शिवी अपने फ्लोर पर आ गई। कहीं ना कहीं उसे आर्या का अपने भाई बहन के सामने उसकी मेडिकल कंडीशन का जिक्र करना अच्छा नहीं लगा। शिवी काम करते हुए भी उसके बारे में सोच रही थी। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मैंने झूठ बोला था, मुझे ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, वो तो मैंने बचने के लिए कहा था, लेकिन ये लोग तो मेरी बात को पकड़कर ही बैठ गए। उसके भाई बहन कैसे मुझसे दूर जाकर खड़े हो गए और वो भी कैसे रिएक्ट कर रहा था, ये ध्वनि मैम ने कहाँ फंसा दिया मुझे। मेरा अच्छा खासा आने वाला संडे भी बर्बाद हो गया, मुझे कुछ भी करके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से बचना होगा। एक हफ्ते पहले मेरी लाइफ अच्छी खासी जा रही थी, इससे अच्छा तो मैं फेल हो जाती। शिवी को अब खुद के ही झूठ बोलने पर पछतावा हो रहा था। ऑफिस खत्म होने के बाद आर्या एली के घर जाने के बजाय ओबरॉय मेंशन गया। वो शौर्य और मायरा से बात तो नहीं करना चाहता था, पर साथ ही वो उस वजह को भी जानना चाहता था जिसके कारण पहली बार शौर्य और मायरा उसके ऑफिस आए थे। रात का टाइम होने की वजह से पूरी ओबरॉय फैमिली डिनर टेबल पर मौजूद थी। आर्या को अचानक वहां देखकर मिस्टर विक्रम सिंह ओबरॉय काफी खुश हुए, तो वहीं आशुतोष ओबरॉय के चेहरे के भाव बदल गए। आर्या ने जब कैरन और शौर्य की मॉम क्रिस्टी को एक साथ डाइनिंग टेबल पर देखा तो उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि हम लोग इतना भी मिलजुल कर रहे। तो क्या तुम्हें जलन हो रही है हमारी फैमिली से? आशुतोष जी बोले, सब तुम्हारी तरह नहीं होते जो रिश्तों में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। क्रिस्टी काफी समझदार है और उसने हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। काश सालों पहले तुम भी कर लेते। जो एडजस्टमेंट पर टिके होते हैं वो सच्चे रिश्ते नहीं होते मिस्टर ओबरॉय, आर्या ने उसी तंज भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इससे पहले कि यहाँ एक और कोल्ड वॉर शुरू हो हमें भाई को यहाँ से ले जाना होगा, मायरा ने शौर्य से फुसफुसा कर कहा। शौर्य वहाँ कुछ बोल पाता उससे पहले मिस्टर आशुतोष बोले, तुम तो घर छोड़ चुके हो ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। शौर्य और मायरा को मुझसे जरूरी बात करनी थी इसलिए वो मेरे ऑफिस आए थे। अटैचमेंट या प्यार जैसा तो कोई रीजन हो नहीं सकता, जरूर इन्हें मेरी जरूरत पड़ी होगी तभी वहां तक चले गए। आर्या के जवाब देने के बाद आशुतोष जी ने शौर्य और मायरा की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों को इससे क्या बात करनी है? इस घर में कुछ भी हुआ तो मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो आप पहले ही छोड़ चुके हैं मिस्टर ओबरॉय, आर्या ने कहा।
कम ऑन डार्लिंग, कैरन ने आशुतोष के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, ही इज योर सन, जरूरी नहीं कि तुम भी इसकी तरह अग्रेशन दिखाओ। ये डिनर टाइम पर आया है, एक अच्छी फैमिली की तरह साथ में डिनर करते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम दोनों थकते नहीं हो क्या आपस में बहस करने से? चलो आओ और खाना खाओ आर्या, विक्रम जी सख्त लहजे में बोले। उन्होंने आर्या को जवाब देने का मौका नहीं दिया और अपनी जगह से उठकर उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बैठा लिया। अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, यहाँ सब आराम से खाना खाएंगे, विक्रम जी सख्त आवाज में बोले। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और साथ में डिनर कर रहे थे। आर्या के सामने खाने की प्लेट पड़ी थी लेकिन उसने उसमें से एक बाइट भी नहीं उठाया। पीटर अंकल ने कहा था कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अगर डैड आगे बढ़ना चाहते थे तो किसी एक के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते थे, इस तरह हर बार अलग अलग लड़कियों के साथ, इसे आगे बढ़ना नहीं दूसरों को तकलीफ देना कहते हैं। उन्होंने न केवल मेरी मॉम को बल्कि मायरा और शौर्य की मॉम को भी बहुत तकलीफ दी है, सोचते हुए आर्या गुस्से से अपने पिता आशुतोष की तरफ देख रहा था। मैंने कहा खाना खाओ आर्या, वरना कहीं सबकी तरह मुझे तुम्हारे साथ भी जबरदस्ती ना करनी पड़े, उसे खाना ना खाते देख विक्रम जी ने डांटा। मेरा मन नहीं है दादू, उनके रोकने के बावजूद आर्या वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगा। जाने दीजिए उसे पापा, आप जानते हो वो किसी की नहीं सुनता, आशुतोष ने कहा। उन्हें उसके वहां से जाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद ओबरॉय फैमिली डिनर करके अपने अपने कमरे में चली गई। सबके वहां से जाने के बाद शौर्य और मायरा जल्दी से आर्या के कमरे में गए। जल्दी बताओ क्या बात करनी है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, उनके वहां आते ही आर्या ने कहा। हम चाहते हैं आप इस घर में वापस आ जाएं, मायरा बोली। अच्छा, तुम दोनों ये कब से चाहने लगे? तुम तो हमेशा से मुझे यहाँ से निकालना चाहते थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आर्या हंसकर बोला। पहले की बात अलग थी ब्रो, पहले जो भी फाइट थी वो हमारी फैमिली के बीच में थी, जब से वो कैरन यहाँ आई है सब कुछ बदल गया है, डैड बस उसके सुनते हैं, यहाँ तक कि मेरी मॉम ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप ही हो जो डैड का सामना कर सकते हो, आप यहाँ वापस आओगे तो उन्हें मजबूर होकर कैरन को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, शौर्य ने सारी बातें आर्या के सामने रखी। कैरन को यहाँ से निकालने का सारा काम आप हम पर छोड़ दीजिए, किसी को भनक भी नहीं लगेगी और वो अपने आप यहाँ से चली जाएगी, बस आप वापस आ जाइए, मायरा ने कहा। उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद आर्या बेड से उठा और बोला, साफ साफ था ना कि तुम घर में बोर हो रहे हो, मेरे और डैड की फाइट से तुम दोनों को जो एंटरटेनमेंट मिलता था वो नहीं मिल रहा है, डैड पूरी तरह बदल गए हैं, इसका मतलब अब वो अपना पूरा टाइम कैरन के साथ बिताते हैं और घर में क्या चल रहा है उन्हें कोई खबर नहीं। वेकेशन होने की वजह से तुम दोनों अपने अपने इंस्टीट्यूट भी नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ घूमने के लिए डैड ने परमिशन नहीं दी होगी, वैसे काफी अच्छा तरीका निकाला है मुझे वापस यहाँ बुलाकर इस घर में फिर से मेरे और डैड के बीच लड़ाई करवाने की। सॉरी हाफ सिब्लिंग्स, मैं यहाँ किसी के एंटरटेनमेंट के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरे पास करने के लिए और भी हजारों काम है। उनके मन में जो भी चल रहा था वो आर्या को समझते एक मिनट भी नहीं लगी, उसने अपनी बात खत्म की और वहां से वापस अपने घर को जाने लगा। ये ऐसे क्यों है, इन्हें हर बात का कैसे पता चल जाता है, माया पैर पटकते हुए बोली। सही कहा तुमने, ये हर बार हमारे प्लान पर पानी फेर देते हैं, मन तो कर रहा है इनका सर फोड़ दूं, भगवान करे इन्हें वही बीमारी हो जाए जो इनके केबिन में बैठी उस लड़की को थी, वैसे भी इन्हें अकेले रहना पसंद है और इनका जैसा नेचर है वैसे कोई और इनके पास आना भी नहीं चाहेगा, शौर्य गुस्से में चिल्लाकर बोला। उन दोनों की बातें आर्या के कानों में पड़ रही थी पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और वो धीमे कदमों से चलते हुए चारों तरफ देखता हुआ वहां से जा रहा था।